جی رادھا مادھو کنج بہاری جی گوپی جن ولبھ گریور دھاری گوپی جن ولبھ گریور دھاری یشودانندن برج جنرنجن یشودانندن برج جنرنجن جنا یمنا تیرا ونچاری یمنا تیرا ونچاری جی رادھا مادھو کنج بہاری جی رادھا مادھو کنج بہاری گوپی جن ولبھ گریور دھاری گوپی جن ولبھ گریور دھاری یشودانندن برج جنرنجن یشودانندن برج جنرنجن یمنا تیرا ونچاری یمنا تیرا ونچاری جی رادھا مادھو کنج جی رادھا مادھو کنج بہاری ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام 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 ہرے 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 کرشنا 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 ہرے 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 رام 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 ہرے 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 کرشنا 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 ہرے 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 رام 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 ہرے 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 کرشنا 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 ہرے 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 رام 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 ہرے 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 کرشنا 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 ہرے 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 رام 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 ہرے 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 کرشنا 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 ہرے 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 رام 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 ہرے 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 کرشنا 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 ہرے 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 رام 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 ہرے 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 کرشنا 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 ہرے 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 رام 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 ہرے ہرے Jai Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe. Jai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai. Jai Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Jayam Vishnupad Paramahansa Parivraj Kacharya Shtotra Shata His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Laguna Thanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurun Dinatarinam. Vancha Kalpataru Bhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Svarupakam Bhaktavataram Bhaktakhyam Namami Bhakta Shaktikam. Aradhyo Bhagavan Vrajeshatanayas Taddhama Vrindavanam. Ramya Kachidupasana Vrajavadhu Vargenaya Kalpita. Srimad Bhagavatam Pramadam Amalam Prema Pumartho Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhor Matamidam Tatradarahana Paraha. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता का जो अंतिम संदेश है, बल्कि इसका जो मुख्य संदेश है, बल्कि इसका जो एकमात्र उपदेश है और उद्देश्य है, वो ये है कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हो जाएं। भक्ति ये एकमात्र उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता का, और कोई उपदेश नहीं है। सार यही है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः, वो कह रहे हैं कि माम एकम शरणम अर्थात भक्ति जो कि शरणागति पर आधारित है, यही एकमात्र धर्म है, यही सच्चा धर्म है। और अन्य जितने भी धर्म हैं वो श्रेष्ठ श्रेणी के धर्म नहीं है। श्री कृष्ण का मत ऐसा है, और श्री कृष्ण का मत ही परम सत्य है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण परम सत्य है। मत्तः परतरह नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि भगवान श्री कृष्ण से भिन्न कोई परम सत्य नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है। असमान ऊर्ध्व, संस्कृत में भगवान के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। असमान ऊर्ध्व, न उनके समान कोई है, तो ऊर्ध्व या उनसे परे की तो बात ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण असमान ऊर्ध्व है, और उनकी भक्ति भी असमान ऊर्ध्व है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये योग, वो योग, जितने भी योग पद्धतियां हैं वो सब निम्न श्रेणी की हैं भक्ति योग की तुलना में। अंततः ये जितने भी योग पद्धतियां हैं, इनका अंत या इनकी परिपूर्णता भक्ति योग में होती है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम युमे भक्ततमा मतः। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में ये महत्वपूर्ण उपदेश हमें देते हैं कि समस्त योगियों में से सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो सतत मेरे ध्यान में रहता है, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण चिंतन करते हुए वो अपने जीवन को बिताता है, वही समस्त योगियों में से सबसे श्रेष्ठ है। और गीता से ये भी हम उपदेश पाते हैं, और भागवत से भी, श्रीमद् भागवत से, कि इतना श्रेष्ठ पथ होने के बाद भी ये बहुत ही सुलभ है, कोई भी कर सकता है। जबकि ज्ञान योग आदि के लिए जो आवश्यकताएं हैं, इनको आजकल इस आधुनिक काल में करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि ज्ञान योग के पथ में साधक के लिए ये बताया जाता है कि उसे निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, और तार्किक पद्धति से नेति नेति परम सत्य ये नहीं वो नहीं न इति न इति ऐसे कर करके शास्त्रों के पढ़ाई करके अध्ययन करके शब्द भेद करके व्याकरण के दृष्टि से अलग अलग दृष्टियों से देखकर परम सत्य की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। साथ साथ शारीरिक तपस्या मानसिक तपस्या। तो भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्लेशो अधिकतरस्ते शाम अव्यक्ता सत्यचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। वो कहते हैं क्लेशः अधिकतरः तेषां, बहुत अधिक क्लेश होता है कष्ट होता है तेषां उनके लिए, अव्यक्ता सत्यचेतसाम किनके लिए, जिनकी चेतना जिनका चित्त अव्यक्त में मग्न है। अव्यक्त अर्थात निराकार ब्रह्म, केवल ज्योति प्रकाश। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ये अव्यक्त ये निराकार एक ऐसी गति है जिसको प्राप्त करने में व्यक्ति को साधक को केवल दुख ही प्राप्त होता है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है 12वें अध्याय में। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। देहवद्भिर अर्थात जिसने देह धारण किया है इस भौतिक जगत में, उसके लिए ये निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करना तपस्या आदि के माध्यम से बहुत ही मुश्किल है। और फिर क्रम से भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता के 12वें अध्याय में बतलाया है और ये सिद्ध किया है कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। और हम तो बार बार प्राय प्रतिदिन सुनते हैं कि हरि नाम के लिए भक्ति के लिए केवल हरि नाम लेना चाहिए, बच्चा भी ले सकता है वृद्ध भी ले सकता है शिक्षित भी ले सकता है अशिक्षित भी ले सकता है, यहाँ कोई जाति भेद नहीं है देश भेद नहीं है भाषा का भेद नहीं है किसी भी प्रकार का भेद यहाँ भक्ति मार्ग में नहीं है। भक्ति मार्ग सभी के लिए है, परंतु अन्य मार्गों में बहुत ऐसे योग्यता का प्रश्न आता है, कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, कौन संस्कृत पंडित है कौन तपस्या करने योग्य है, बहुत से विचार होते हैं, परंतु भक्ति में ऐसे कोई विचार नहीं है। कोई भी व्यक्ति भक्तों के संग में आके भगवान की भक्ति कर सकता है। योग्यता है तो बस इतनी कि उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। शुरुआत में अल्प मात्र श्रद्धा भी हुई बस उतना पर्याप्त है, फिर भक्तों के संग में वो श्रद्धा की वृद्धि होगी। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग स्याद् भजन क्रिया। जैसे जैसे थोड़ी सी श्रद्धा लेकर व्यक्ति भक्तों के संग में आता है तो भक्त लोग क्या करते हैं, उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं, बल्कि वो खुद भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान के नामों का कीर्तन करता है भगवान की कथा का श्रवण करता है भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करता है भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है भगवान के दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करता है, फिर कहता है मैं और कुछ सेवा करना चाहता हूँ, ठीक है मंदिर का मार्जन कीजिए, ठीक है आप भगवान के लिए रसोई बनाने में आप मदद कीजिए, तो ऐसे व्यक्ति सेवा में लग जाता है और इसे भजन क्रिया कहते हैं। तो भजन के कार्यों में अर्थात सेवा के कार्यों में एक अद्भुत परिणाम होता है, वो क्या है, अनर्थ निवृत्ति अर्थात अनर्थों का निवारण। जितने भी दुर्गुण बुरी चीजें हमारे हृदय में हैं, उनका शनै शनै निवारण होते जाता है और फिर आगे चल के व्यक्ति भक्ति में निष्ठावान हो जाता है। ऐसे निष्ठावान अवस्था में जब वो सुदृढ़ होकर भगवान की भक्ति करता है तो दुर्गुण तो चले ही जाते हैं, अभी भक्ति के अच्छे गुण प्रकट होने लगते हैं उसके अंदर और भक्ति के लक्षण तेजी से प्रकट हो जाते हैं और शीघ्र ही भक्त भक्ति के चरम सीमा की ओर पहुंच जाता है। फिर एक दिन भगवान की कृपा से, गुरु और वैष्णवों की कृपा से वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाता है, जो कि उसकी जीवन की सफलता है। तो वैसे कहने के लिए तो ये अभी 10 मिनट में कह दिया है ना, शुरुआत से लेकर अंत तक, कि हमने भजन क्रिया कर लिया, अनर्थों का निवारण हो गया, निष्ठा आ गई, आगे चल के धीरे धीरे से आसक्ति भगवान के प्रति आ गई, रुचि जागृत हो गई, भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया और प्रेम भक्ति की अवस्था में पहुंच गए। है ना सरल? है तो सरल, लेकिन इसको जीवन में उतारने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोच समझ के, बड़े दृढ़ता से, बड़े हृदय पूर्वक इन भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए, तब जाके हम इस शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। तो भक्ति केवल एक बाह्य वस्तु नहीं है कि हम केवल आके हम माला के ऊपर भगवान का नाम लेंगे या भगवान के सामने आके उनका दर्शन लेंगे या केवल प्रवचन में आके हम बैठेंगे या कोई बाहरी रूप से हम सेवा करेंगे। ये सब चीजें तो भक्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं, परंतु भक्ति का हृदय क्या है? भक्ति का हृदय है प्रेम। तुम जो भी करते हैं वो प्रेम से करना चाहिए, बड़े भक्ति भाव से, बड़े श्रद्धा से करना चाहिए, तब हमारी प्रगति बहुत तेज गति से होगी। भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में जब ये साबित करते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है, वो अध्याय को वहीं पर समाप्त नहीं करते हैं, बताते हैं कि ठीक है, मैंने कह दिया भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और सभी को मेरी भक्ति करनी चाहिए, परंतु मेरे भक्त को कैसे होना चाहिए? भगवान केवल इतना नहीं कहते हैं कि हमें भक्तों के संग में आना चाहिए आदि, ये सब तो चीजें हैं, परंतु किस तरह के गुणों का अनुशीलन हमें करने का प्रयास करना चाहिए, एक भक्त के अंदर कौन से गुण होने चाहिए जिनके द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हमारी ऊपर कृपा करेंगे, और जब भगवान की कृपा होती है हमारे ऊपर तब हमें भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति केवल हमारे प्रयास से प्राप्त नहीं हो सकेगा, हालांकि प्रयास का भी एक महत्वपूर्ण भाग है भक्ति में, परंतु प्रयास करते रहें और भगवान की कृपा नहीं मिली तो इससे हमें भक्ति की चरण सीमा प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे ताकि उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, ये प्रश्न आता है। हम तो जप कर रहे हैं, हम मंदिर आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रगति हो भी रही है, परंतु भगवान हमारे सेवा से प्रसन्न हुए या नहीं कैसे पता चल सकता है? तो भगवान यहाँ कई श्लोकों में बताते हैं कि मेरे भक्त के अंदर जिस दिन ये सारे गुण जिनका उल्लेख मैं अभी करने जा रहा हूँ, यदि मेरे भक्त के अंदर ये सारे गुण प्रकट हुए तो ये भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो ये कौन से गुण हैं जो कि हमारे अंदर होने से भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे? 12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में भगवान इन गुणों का उल्लेख आरंभ करते हैं। तो आइए इन श्लोकों को हम अभी पढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। यदि हो सके तो इनको कंठस्थ करने का प्रयास हमें करना चाहिए और जीव में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। इन श्लोकों के ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए कि इन गुणों को हमारे अंदर हम कैसे लाएं। भक्ति करते करते भी ये गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट हो ही जाते हैं, परंतु उस अवस्था तक हमें रुकना नहीं चाहिए, अपनी ओर से प्रयास भी करना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः। हाँ कहिएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निरहंकारः दुःख सुख क्षमी सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मनो बुद्धि भक्त समय प्रिय। और कोई बोलेगा सा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः। अद्वेष्टा ईर्ष्याविहीन सर्वभूतानां सर्वजीवों के प्रति मैत्रः मैत्री भाव वाला करुण दयालु एव निश्चय ही च भी निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित निरहंकार मिथ्या अहंकार से रहित सम समभाव दुख दुख सुख तथा सुख में क्षमी क्षमावान संतुष्ट प्रसन्न तुष्ट सततम् निरंतर योगी भक्ति में निरत यत आत्मा आत्मसंयमी दृढ़ निश्चयः संकल्प सहित मई मुझ में अर्पित संलग्न मनः मन को, बुद्धि ही तथा बुद्धि को, यह जो मत भक्त है, मेरा भक्त, सह वह मैं मेरा प्रिय है प्यारा। श्रील प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ ये थे। अब श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद भी सुनिए। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। है ना, काफी लंबा लिस्ट, लेकिन लिस्ट भगवान का समाप्त नहीं हुआ। अब आगे भी चल के भगवान बहुत कुछ करने वाले हैं, कहने वाले हैं। इसलिए अभी इन श्लोकों की चर्चा थोड़े इन आने वाले 2-3 रविवारों में करेंगे। शुरुआत यहाँ से करेंगे अद्वेष्टा से, क्योंकि भगवान भी यहीं पे शुरू करते हैं। और एक एक करते ही करके जितने ये गुण हैं, संक्षेप में इनकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हमें विचार करना चाहिए इन श्लोकों के ऊपर, क्योंकि भक्ति में प्रगति करने के लिए व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार का अर्थ क्या होता है? अंदर से ईमानदार। आत्म परीक्षण करना चाहिए भक्त को सतत, कि मुझ में कौन सी कमियां हैं, मुझ में कौन से दोष हैं। ये नहीं कि दिन भर हम बस ऐसे सोचते बैठे हैं, परंतु व्यक्ति को समय समय पर विचार करना चाहिए। हाँ, ऐसी घटना हुई और उसमें मेरे दोष प्रकट हुए, मेरे अंदर जो दुर्गुण हैं मैंने प्रकट कराए, तो इनका निवारण मुझे करना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि किसी समस्या का समाधान करना, इसके लिए उस समस्या को पहचानना, ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है। जब समस्या क्या है ये पता चल जाता है, तब समस्या का निवारण हो सकता है। जैसे कई बार ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति को रोग हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं चलता कभी कभी कि कौन सी बीमारी है। कई बार ऐसे हो जाता है, अनेक डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी पता नहीं चलता, अंततः फिर वो समझ लेते हैं कि ये बीमारी है, फिर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। तो समस्या क्या है ये समझना, ये बहुत बड़ी बात है। पहले इलाज तो भगवान ने दिया है, परंतु ये भी बताया है कि अंदर समस्याएं कौन सी हैं, ये भी पहचान लेनी चाहिए। तो भक्त को चाहिए कि वो अपने अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, जो अनेक जन्मों से इकट्ठे करके आया है भक्त, उन दुर्गुणों को पहचाने और पहचान कर बड़े शुद्ध हृदय से इनका निवारण करने का प्रयास करे। तो सबसे पहला है अद्वेष्टा। अद्वेष्टा के लिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं ईर्ष्याविहीन, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया ईर्ष्या की दुनिया है, सही है ना? बाहर की दुनिया में केवल ईर्ष्या और द्वेष ही दिखाई पड़ता है। सब जगह एक व्यक्ति दूसरे के प्रति ईर्ष्या करता है, एक समाज दूसरे समाज के प्रति ईर्ष्या करता है, एक देश दूसरे देश के प्रति ईर्ष्या करता है। ऐसे सारे विश्व भर में ये ईर्ष्या की भावना दिखाई पड़ती है। और प्रज्वलित अग्नि के समान हर एक प्राणी के हृदय में ये जलती रहती है, बल्कि केवल मनुष्यों में नहीं, पशुओं में भी, पक्षियों में भी ये ईर्ष्या की भावना, ये द्वेष की भावना विद्यमान होती है, पाई जाती है, और ये बहुत भयंकर एक दुर्गुण है, द्वेष या ईर्ष्या, जो हमको जला डालती है। ऐसे बताया जाता है कि ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो धनी व्यक्ति को निर्धन बना देता है। क्यों? क्योंकि इतना सब धन होते हुए भी वो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर ईर्ष्या करेगा तो अपने धन का भी भोग करने के लिए उसकी मन की स्थिति नहीं रहती है, उसके मन की शांति भंग हो जाती है। सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं होने के बराबर है, क्योंकि ऐसी अवस्था में उसके मन में एक ही विचार रहता है कि उसके पास कितना है, मेरे पास क्यों नहीं है। और इस ईर्ष्या या द्वेष के मूर्तिमान स्वरूप थे दुर्योधन। दुर्योधन बहुत द्वेष करता था पांडवों से। पांडव जो है वो समस्त अच्छे गुणों से युक्त थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रतीक, सद्गुण संपन्न, अर्जुन शूर वीरता में उनका कोई सामना नहीं कर सकता था, भीम जहां तक बल है इनका सामना कोई नहीं कर सकता था, भीमसेन के समान युद्ध में या बल में कोई सामने भी नहीं आ सकता था, नकुल सहदेव उनमें भी इतने अच्छे अच्छे गुण थे, उनका सौंदर्य इनका सामना कोई नहीं कर सकता था। और ये पांचों पांडव जिस प्रकार से प्रेम से रहते थे, धर्म के पथ से चलते थे, तो दुर्योधन को ये बिल्कुल सहन नहीं होता था। तो दुर्योधन ने अनेकों को कष्ट दिया, पांडवों को बहुत कष्ट दिया, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट किसको हुआ होगा? दुर्योधन को स्वयं। जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि जल रही होती है वो कभी भी शांत नहीं हो सकता, और जब शांति नहीं है तो सुख कहां से आएगा? अशांतस्य कुतः सुखम, गीता में भगवान कहते हैं ना, जब अशांति की अवस्था होती है तो सुख कहां से आएगा। तो इसलिए जब किसी के मन में ईर्ष्या की भावना रहती है या द्वेष रहता है तो वो सुखी कभी नहीं हो सकता, शांत कभी नहीं हो सकता। और फिर ये ईर्ष्या एक ऐसे गुण है जो अन्य जितने भी गुण हैं, दुर्गुण हैं, उन सबको आमंत्रित करता है, खींच के ले आता है। और क्योंकि व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या रहता है तो वो देखता है कि दूसरे को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, फिर आगे बढ़ता रहता है और ऐसे करके जितने भी और दुर्गुण है वो एक के बाद एक आने लगते हैं, वो पाप करने लगता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसे कि दुर्योधन ने किया। दुर्योधन ने बहुत प्रयास किया कि पांडवों का नुकसान हो, परंतु पांडवों की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे, इसलिए दुर्योधन वास्तव में पांडवों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, और अंत में पांडवों का ही विजय हुआ। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानूति ध्रुवानीतिर मतिर मम। तो अंत में संजय का निष्कर्ष यही है ना, कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ वो हैं, और जहाँ उनके शुद्ध भक्त अर्जुन हैं जो गांडीवधारी हैं, जिनका नाम है धनंजय आदि, जहाँ ये दोनों उपस्थित हैं, वहाँ नीति विजय ऐश्वर्य ये सब स्वाभाविक रूप से चले आएगा। तो दुर्योधन ने बार बार प्रयास करने से भी विजय प्राप्त नहीं किया। बचपन से ही ये द्वेष था दुर्योधन के मन में। बचपन में एक बार भीमसेन को विष खिलाया लेकिन भीमसेन बच गए, बल्कि भीमसेन उसके बाद में और भी शक्तिशाली होकर चले आए, क्योंकि जब विष पिलाकर भीमसेन को बांध दिया दुर्योधन ने और पानी में ढकेल दिया, तो पानी में नीचे चले गए भीमसेन, और वहां पे नागलोक के निवासियों ने उनकी रक्षा की, और बल्कि उनको एक अमृत पिलाया जिससे भीमसेन को 10,000 हाथियों की शक्ति प्राप्त हुई, और फिर वो निकल आए और भी मजबूत होकर और भी ताकतवान होकर चले आए और दुर्योधन को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। वारणावत में उनको जलाने का प्रयास किया, लाक्षाग्रह में सफल नहीं हुए दुर्योधन। ऐसे अनेक अनेक प्रयास किए। उसी प्रकार शिशुपाल ने बहुत ईर्ष्या की भगवान श्री कृष्ण से, वो भी ईर्ष्या के स्वरूप, बचपन से ही जैसी वो तोतली बोली बोलते थे, जैसे छोटा बच्चा जो है वो माँ को, माँ का नाम पहले सीखता है, पिता का नाम सीखता है, फिर छोटी छोटी चीजें सीखता है, खाना कुछ ऐसे नाम सीखता है। शिशुपाल बचपन से कृष्ण को गाली देना सीखा, बचपन से ही ये स्वभाव, ईर्ष्या का स्वभाव, पूर्व संस्कार। तोतली बोली में भी भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द बोलता था। तो ये सब उदाहरण हमारे शास्त्र में बताए गए हैं, ये ऐतिहासिक उदाहरण हैं, घटनाएं हैं, व्यक्ति हैं। तो क्यों बताए गए हैं? देखिए, उपदेश दो प्रकार से दी जाती है। एक हमारे सामने आदर्श व्यक्ति को रखा जाता है कि हाँ ऐसे होना चाहिए, देखो इनमें कितने अच्छे गुण हैं, इस प्रकार के गुणों का अनुशीलन हमें करना चाहिए, ऐसे हमें बनने का प्रयास करना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर है। दूसरी ओर ऐसे भी सिखाया जाता है हमें ये दिखाकर कि कैसे हमें नहीं बनना चाहिए, किन चीजों से हमें बहुत होशियार या सावधान रहना चाहिए। इसलिए जैसे जैसे युधिष्ठिर का उदाहरण सामने है, वैसे दुर्योधन का उदाहरण भी साथ साथ है, ताकि हम समझ ले दुर्योधन को देखकर कि हमें कैसे नहीं बनना चाहिए। अंत में दुर्योधन और शिशुपाल दोनों का वध हुआ, कंस का वध हुआ। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, जो हृदय से प्रयास कर रहे हैं, अवश्य उनकी जीत अंत में होने ही वाली है। परंतु हमें देखना चाहिए कि हमारे हृदय में जो दुर्योधन बैठे हैं, जो शिशुपाल बैठे हैं, उनका दमन किया जाए। ऐसे बताया जाता है कि सत्ययुग में जो असुर और देव थे, वो अलग अलग लोकों में रहते थे। जब त्रेता युग आया तो असुर और देव एक ही लोक में रहने लगे, लेकिन अलग देशों में, जैसे श्री रामचंद्र यहाँ और लंका में रावण। फिर जैसे द्वापर युग आया तो ऐसे बताया जाता था कि असुर और देव एक ही देश में रहते थे, परंतु अलग अलग शहरों में, जैसे हस्तिनापुर में कौरव और इंद्रप्रस्थ में पांडव। और कलयुग में ये देव और असुर कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में रहते हैं। ये हर एक व्यक्ति के हृदय में ये दोनों हैं, दुर्योधन भी हैं, युधिष्ठिर महाराज भी हैं। कभी कभी युधिष्ठिर महाराज बोल लेते हैं तो हम बहुत धार्मिक बन जाते हैं, हमारे अंदर सब बिल्कुल अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं। कभी कभी जब दुर्योधन अपनी बोली बोल लेते हैं तो फिर हमारा जो दूसरा स्वरूप है वो बाहर आता है। तो जब हम भक्ति मार्ग में आए हैं तो हमें हमारे हृदय के अंदर जो दुर्योधन है, जो बैठे हैं बिन बुलाए मेहमान, इनको हमें निकालना चाहिए और यहाँ पर उनका दमन करना चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज जो अंदर हैं, उनको बलवान बनाना चाहिए। तो ये द्वेष से हमें मुक्त होना चाहिए। ऐसे कई और उदाहरण भी हैं। ऐसे एक एक उदाहरण चर्चा करते जाएं तो जितने भी रविवार हैं सब उसमें ही चले जाएंगे, या अच्छे या बुरे उदाहरण। और एक उदाहरण है चैतन्य चरितामृत में वर्णित, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहा करते थे तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को कृष्ण भक्त बनाया। इसके पहले सार्वभौम भट्टाचार्य एक निराकारवादी थे, मायावादी थे, भगवान के रूप को मिथ्या या माया समझते थे और वो सोचते थे कि भगवान की भक्ति ये भी मिथ्या है। केवल ज्ञान प्राप्त करके हमें निराकार में लीन हो जाना चाहिए और इससे अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देना चाहिए। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु से उनका संवाद हुआ तो महाप्रभु ने उनके समस्त तर्कों का खंडन किया और उनको भगवान का भक्त बनाया। एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में निमंत्रण किया प्रसाद के लिए, और 6 घंटे पहले भोजन के महाप्रभु ने स्वीकार किया तो तैयारी शुरू हो गई। सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया, और जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए दोपहर के 12 बजे तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि केवल 6 घंटों के अंदर सार्वभौम भट्टाचार्य ने इतने सारे व्यंजन और पदार्थ बनाए थे भोजन के लिए कि उन्होंने विश्वास नहीं किया कि केवल सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी ने इतने सारे चीजें बनाई हैं। उन्होंने कहा, इतने सारे चीजें बनाई, ऐसे लगता है कि ये तो 100 लोगों ने 100 चूल्हे के ऊपर बनाकर बैठकर बनाया होगा। इतने सारे कैसे बनाए तुमने सार्वभौम? तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया कि जो खाने वाले हैं ना अभी इस भोजन को, उनकी कृपा से ही सब हो गया। उन्होंने, उनकी शक्ति हुई, उन्हीं की कृपा हुई, इसलिए ये सब हो गया। वैसे इसमें मेरा और मेरे पत्नी का कोई श्रेय नहीं है। तो फिर महाप्रभु ने कहा कि अरे सार्वभौम, इतना सब मैं थोड़ी खा पाऊंगा, ये संभव है मुझे खाने के लिए? तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, क्यों नहीं संभव है, जगन्नाथपुरी में आप 52 बार सैकड़ों सैकड़ों पात्र भोजन स्वीकार करते हैं, दिन में 52 बार आपको भोग लगा चढ़ा जाता है जगन्नाथपुरी में, और आप आराम से खा लेते हैं, अपचन नहीं होता आपको। उसी प्रकार में वृंदावन में केवल माता यशोदा का भोजन आप नहीं लेते थे, आप जगह जगह जाके वृंदावन में हर एक घर में लेते थे। आपके पिताजी के बड़े भाई नंद महाराज के बड़े भाई उपनंद अभिनंद, उनके घर में आप कभी कभी खाया करते थे। यहाँ घर में खाने के बाद कभी कभी सुनंद पांडव, जो नंद महाराज के छोटे भाई थे, उनके यहाँ जाके खा लेते थे। कभी कभी माता यशोदा के जो भाई थे, छोटे भाई, जैसे यशोधर, यशोदेव, सुदेव आदि, उनके घर में जाके कभी प्रसाद ले लेते थे। कभी नंद महाराज की जो बहनें हैं, उनके जो पति हैं, जैसे महानील, सुनील आदि, उनके घर में जाके आप भोजन लेते, सबको संतुष्ट करते हैं। जब गोवर्धन लीला में भोग चढ़ा, अन्नकूट हुआ, आपने तो चावल आदि के पहाड़ खा लिए, तो इसलिए आपको खाने में कोई असुविधा नहीं होगी। हंसकर फिर चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे, और जैसे ही बैठे तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं, वो दरवाजे पर एक लाठी लेकर खड़े हो गए। ये क्यों? क्योंकि उस समय उनके दामाद, जिनका नाम था अमोघ, वो उसी घर में रहा करते थे, और अमोघ, हालांकि उसका जन्म एक कुलीन सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, फिर भी स्वभाव से ये अमोघ जो है ये निंदक था। निंदक अर्थात निंदा करने वाला आदमी, उसको दूसरों की निंदा करना, दूसरों से ईर्ष्या या द्वेष करना ये बहुत पसंद था, उसका स्वभाव ही था ऐसे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत सावधान थे, अमोघा यदि यहाँ इस समय आ जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए लाठी लेकर दरवाजे पे खड़े थे। परंतु केवल सार्वभौम और अपनी पत्नी थी, तो जब कुछ सेवा करना होता था महाप्रभु का तो दोनों को आना पड़ता था। कभी पत्नी अंदर जाती थी तो सार्वभौम भट्टाचार्य को सेवा करना पड़ता था। तो एक बार ऐसे हुआ कि महाप्रभु की सेवा करते करते दरवाजे के ऊपर लापरवाही थोड़ी हो गई, ध्यान छूट गया वहां से, मौके का फायदा उठाया अमोघा ने और सीधे अंदर चले आया और अपन कमर पे हाथ लेकर खड़ा हुआ। अरे ये इतना भोजन है यहाँ पर, ये तो 12 आदमी भी खा नहीं पाएंगे और ये एक सन्यासी खा रहे हैं। तो जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य सेवा कर रहे थे महाप्रभु को देखा, तो चेहरा देखा सार्वभौम भट्टाचार्य का, तो धीरे से निकल गए वहां से। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने लाठी ली और पीछा किया, भागते गए अमोघा के पीछे। अमोघा भी लेकिन जवान थे, इसलिए और तेजी से भाग गए, निकल गए। सार्वभौम भट्टाचार्य उनको पकड़ नहीं पाए। फिर हाहाकार करते हुए, शोक करते हुए सार्वभौम जी वापस आए और बहुत अपशब्द कहे, बहुत भला बुरा अपने दामाद को बहुत कुछ कहा। और चैतन्य महाप्रभु सुनकर वो हंसने लगे, कहने लगे, अरे रहने दो, बच्चा है आपका, बेटा है, जैसा ही है ना, क्या कोई बात नहीं, रहने दीजिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आनंद से प्रसाद का सेवन किया और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने निवास स्थान में छोड़ने के लिए चले गए। लेकिन चलते चलते और पहुंचने के बाद भी सार्वभौम वहां बहुत शोक कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, अरे रे क्या दुर्घटना हुई, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, आपको मेरे घर में प्रसाद के लिए बुलाया और आपको अपमानित करके हमने छोड़ दिया, क्या करें, हमें ऐसे दामाद मिला, अब क्या करें। तो महाप्रभु ने उनको सांत्वना दी, उनका मन शांत किया और कहा कोई बात नहीं। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य वापस चले गए। वापस जब घर आए तो वो अपने पत्नी के साथ बात करने लगे, कहने लगे कि अभी ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हमारे घर में, अब क्या करना चाहिए। मेरी भावना तो ये है कि हमारी पुत्री को विधवा हो जाना चाहिए, अर्थात मेरे दामाद की मृत्यु होनी चाहिए। क्या फायदा ऐसे दामाद होकर, या मेरे पुत्री के लिए भी क्या फायदा ऐसे पति होकर जो इस प्रकार से भगवान और उनके भक्तों का अपराध करे, जिसके अंदर इतनी निंदा की भावना है या द्वेष और ईर्ष्या की भावना है। परंतु क्या करें, वो ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण की मृत्यु चाहना ठीक नहीं। लेकिन हाँ, इससे अच्छा ये है कि मैं ही आत्महत्या कर लूं। लेकिन नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं, तो दोनों का शरीर जो है भगवान की संपत्ति है, तो क्या किया जाए। तो फिर हाँ, ऐसे है कि कम से कम हमारी पुत्री को समझ लेना चाहिए कि उसका पति नहीं है, और मैं आज से इस दामाद का, इस व्यक्ति का मुंह ही नहीं देखूंगा, क्योंकि ऐसे निंदक व्यक्ति का मुंह देखने से मेरे सारे भक्ति के गुण सब खत्म हो जाएंगे, अपराध होगा मुझसे। और ऐसी बातचीत करते करते सार्वभौम भट्टाचार्य और अब उनकी पत्नी जो है वो शोक करते रहे। काफी समय ऐसे बीत गया, कई घंटे बीत गए। और हुआ ये कि अगले दिन सुबह ही एक बीमारी हो गई अमोघा को, विषूचका, जिस कॉलेरा बोलते हैं, वो कॉलेरा की बीमारी हो गई। और उस जमाने में तो कोई एंटीबायोटिक दवाई नहीं थी और वहां के वैद्य भी उस समय ठीक नहीं कर पाए अमोघा को, और वो मृत्यु की शैया पर लेटा पड़ा। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा, देखो भगवान की योजना है, जो इस प्रकार से भगवान का अपमान करता है उसकी यही दशा होती है। तो एक भक्त ने जाकर चैतन्य महाप्रभु को बताया कि अमोघा की ये हालत हो गई है। तो तुरंत वहां पर चैतन्य महाप्रभु चले गए और वहां पर बैठे अमोघा के पलंग पर, और अमोघा के हृदय पर उन्होंने हाथ रखा और कहा कि अमोघ, एक ब्राह्मण के हृदय में कृष्ण निवास करते हैं, केवल ब्राह्मण क्यों, हर एक व्यक्ति के, प्राणी के हृदय में भगवान कृष्ण निवास करते हैं, तो खास करके जब तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारा हृदय बहुत साफ होना चाहिए, जबकि ये कृष्ण का स्थान है, तो कृष्ण को रहने के लिए एक अच्छा निवास स्थान देना चाहिए। तो एक ब्राह्मण के लिए खास करके ऐसे द्वेष और ईर्ष्या की भावना हृदय में होना ये ठीक नहीं है, कृष्ण के लिए अच्छा स्थान नहीं होगा फिर। तो जैसे ही महाप्रभु ने अपने कर कमल रख लिया अमोघा के हृदय के ऊपर, वैसे ही सारा जो रोग है कॉलेरा का वो निकल गया, खत्म हो गया। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ और महाप्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम अमोघा के अंदर चल हो गया। और जैसे ही महाप्रभु ने भगवान का नाम लिया तो अमोघा भी उठकर भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे प्रेमावेश में, वो भी कृष्ण प्रेमी बन गए। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या चमत्कार हो गया। और जब सार्वभौम भट्टाचार्य को ये पता चला तो वो आए, उन्होंने कहा कि प्रभु आपने क्या किया, ऐसे व्यक्ति को तो मृत्यु दंड देना चाहिए था, लेकिन आपने उसको भक्त बना दिया, वो भी शुद्ध भक्त बना दिया। तो वो तो गुस्से में थे, तो महाप्रभु ने उनको शांत किया कि देखो सार्वभौम, ये तो आपका बेटा है, जो पिता होता है ना अपने बेटे के अपराधों को गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन देखो अंतिम तुम्हारा उद्देश्य क्या था कि तुम्हारा दामाद भी भक्त हो जाए, लेकिन अभी हो गया है ना शुद्ध भक्त, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जो है शांत हो गया। जब महाप्रभु उद्धार कर रहे थे अमोघ का, तो उन्होंने इसका रहस्य बताया कि उन्होंने अमोघ का उद्धार क्यों किया। उन्होंने कहा कि देखो अमोघ, तुम ब्राह्मण हो ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे सबसे अच्छा गुण क्या है पता है? क्या अच्छा गुण था? वो सार्वभौम भट्टाचार्य के रिश्तेदार थे, उनके दामाद थे। तो भगवान ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अमोघ से कहा कि देखो मेरे लिए सार्वभौम भट्टाचार्य इतने प्रिय हैं कि मैं सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और ये है भगवान का भक्त वात्सल्य का गुण, अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं भगवान कि उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद भी कभी कभी वो बदनाम हो जाते हैं अपने भक्त के लिए। जैसे भीष्म देव के वचन को बचाने के लिए वो खुद बदनाम हो गए। श्री कृष्ण ने वचन लिया था युद्ध के पहले, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले, कि मैं अस्त्र को हाथ में नहीं लूंगा, अस्त्र उठाऊंगा नहीं, परंतु भीष्म देव ने वचन लिया कि मैं भगवान को वचन तोड़वा कर ही रहूंगा। तो एक और भगवान का वचन, दूसरे और भक्त का वचन। तो भगवान के विचार में जो भक्त का वचन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान ने सोचा कि मुझमें श्रद्धा लोगों की खत्म हो जाए चलेगा, लेकिन भक्तों में श्रद्धा लोगों की खत्म नहीं होनी चाहिए। मेरे भक्तों ने जब कोई वचन लिया दिया है या कोई व्रत लिया है उसका पालन होना चाहिए। तो भीष्म देव के व्रत का पालन करने के लिए, उनके वचन को बनाए रखने के लिए भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, उसके बाद बदनाम हुए कि आपने वचन दिया था आपने तोड़ दिया। तो इस प्रकार से भक्त जो होते हैं भगवान के लिए बहुत प्रिय होते हैं। तो महाप्रभु ने अमोघा से कहा कि सार्वभौम, न केवल सार्वभौम मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, उससे जो भी कोई उसके रिश्तेदार हैं वो सब मेरे लिए बहुत प्रिय है, यहां तक कि उसका कोई पालतू कुत्ता भी होता तो वो भी मेरे लिए बहुत प्रिय होता। तो इस प्रकार से तुम तो दामाद हो सार्वभौम भट्टाचार्य की, उसकी प्रिय बेटी से तुमने विवाह किया है, तो तुम भी मेरे लिए बहुत प्रिय हो। इस प्रकार से भगवान ने अमोघा का उद्धार किया। जब ध्रुव महाराज, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त बने थे, जब उनको भगवान के धाम वैकुंठ में जाने का समय आया और वैकुंठ का विमान आया और मूर्तिमान मृत्यु के सर के ऊपर कदम रख के ध्रुव महाराज चढ़ने वाले थे वैकुंठ विमान में, तो उन्होंने विष्णु दूतों से पूछा कि ठीक है आप मुझे वैकुंठ ले जा रहे हो, लेकिन मेरी माँ का क्या, मेरी माता वो भी चले आए हमारे साथ। तो विष्णु दूतों ने कहा देखो उधर आसमान में देखो, तुम्हारी माँ दूसरे वैकुंठ विमान में जा रही है, तुमसे आगे निकल गई है, वो आगे चली जा रही है वैकुंठ की ओर। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। तुमसे संबंधित है, तो देखिए भक्ति करने का लाभ कितना होता है। कई बार देखा जाता है कि रिश्तेदार बहुत क्रोधित हो जाते हैं, उनका कोई व्यक्ति, उनके कोई परिवार का सदस्य यदि भक्ति करता है तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिलहाल कई दिनों में और आज की भी ऐसी कई घटना आज भी हुई है, कई घटनाएं, तो रिश्तेदार बहुत नाराज हो जाते हैं। क्यों नाराज होते हैं? अज्ञान की वजह से, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि जो भक्ति कर रहा है उसके लिए कितना लाभ होगा और हम जो नहीं कर रहे हैं हमारे लिए भी कितना लाभ होगा उसके भक्ति करने के कारण। तो इस प्रकार से अमोघा जो इतना द्वेषी था, इतना निंदक व्यक्ति था, उसका भी उद्धार चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा हो गया। तो ये उपदेश हमें महाप्रभु को याद रखना चाहिए जो कि उन्होंने अमोघा को दिया, कि ये हमारा हृदय है, कृष्ण का निवास स्थान है, ये शुद्ध स्थान होना चाहिए, यहाँ पर ईर्ष्या नाम के कोई वस्तु के लिए स्थान नहीं होना चाहिए, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो यदि हमने ये ईर्ष्या भावना को अपने हृदय से निकाल दिया तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर, यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। और ये ईर्ष्या और द्वेष केवल पृथ्वी लोक की बात नहीं, ऊपरी लोकों में भी पाया जाता है। जब इंद्रदेव ने देखा कि पृथु महाराज यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो उनको थोड़ी चिंता हुई। 2 यज्ञ, 10 यज्ञ, 50, 60, 70, 80, 90, जब 99 यज्ञ समाप्त हो गए और 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे थे तब इंद्रदेव हड़बड़ा गए। उन्होंने सोचा कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति 100 लगातार अश्वमेध यज्ञ कर लेगा उसे इंद्र का पद प्राप्त होगा, तब मेरा क्या होगा। तो व्यक्ति ईर्ष्या क्यों करता है इस दुनिया में? क्योंकि उसे आसक्ति होती है इस दुनिया के भोग से, इस दुनिया के ऐश्वर्य से, इस दुनिया के पद आदि से। वो चाहता है कि मुझे ये सब मिल जाए, दूसरों को नहीं मिले। जो भोग प्रवृत्ति होती है उसके कारण ये निर्माण होता है। तो इंद्रदेव ने सोचा कि मुझे होना है, तो पृथु महाराज ने 99 कर दी तब तक मैं चुप बैठा, लेकिन ये 100वां करने जा रहे हैं तो फिर इसमें तो गड़बड़ है। तो इंद्रदेव ने वेश बदल के अश्व जो होता है घोड़ा यज्ञ का वो चोरी कर लिया, एक सन्यासी का वेश धारण किया, लाल वस्त्र पहन के वो चले आए और इंद्रदेव का जो घोड़ा है यज्ञ में इस्तेमाल किया जा रहा था उसको उठा लिया और भगा के जा रहे थे आकाश पथ से। सबने देखा कि अरे क्या हो रहा है, कौन ले जा रहा है घोड़े को। सब पृथु महाराज के पुत्र थे तो उन्होंने पीछा किया और उन्होंने आखिर घोड़े को पकड़ लिया। जब इंद्र ने देखा कि इनका पुत्र आ रहा है तो घोड़े को छोड़कर भाग गए और पृथु महाराज के पुत्र ने घोड़े को फिर से पकड़ के वो पीछे यहां से ले आए, इसलिए पृथु महाराज के पुत्र का नाम हुआ विजिताश्व, जिसने अश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, उस घोड़े को फिर से वापस ले लिया। तो इंद्रदेव ने ऐसे कई बार प्रयास किया। उस समय से ऐसे कहा जाता है कि जो कपटी साधु हैं उनकी शुरुआत हुई, क्योंकि इंद्रदेव ने ढोंग किया था साधु बनने का, साधु का एक सन्यासी का वेश धारण किया और वेश धारण किया था केवल चोरी करने के लिए, घोड़े को द्वेष भावना से, ईर्ष्या भावना से वो पोशाक ग्रहण किया था। हालांकि इंद्रदेव गृहस्थ हैं, उन्होंने एक सन्यासी का वेश धारण किया और उद्देश्य भी शुद्ध नहीं था। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि उसके बाद से जो गलत उद्देश्य से लोग ऐसे साधु वेश धारण करने के लिए शुरू हो गए। और आज तो ये देखा जाता है सारे समाज में ऐसे कई उदाहरण है, इसीलिए लोगों के मन में साधुओं के प्रति जो और धर्म के प्रति भी जो श्रद्धा है वो कम होती गई होती जा रही है। इसलिए भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए, यदि भक्तों का व्यवहार ठीक नहीं होगा समाज में, लोगों के समक्ष रहते हुए बात करने का ढंग ठीक नहीं होगा, व्यवहार ठीक नहीं होगा, यदि हम भी ऐसे ईर्ष्या द्वेष आदि ऐसे दुर्गुणों को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं हमारे संबंध में तो अन्यों के साथ, तो लोगों की श्रद्धा भक्ति में कम हो जाएगी, भगवान में कम हो जाएगी। इसलिए भगवान के भक्तों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को बहुत संभालें और अच्छी तरह से व्यवहार करें और भगवान ने बतलाए हुए इन श्लोकों के ऊपर बड़े गौर से विचार करें। तो खैर अंततः बात यहां तक पहुंची कि ब्रह्मदेव जो कि सृष्टि करता है उनको बीच में आना पड़ा मध्यस्थी होकर, उन्होंने आकर दोनों को सांत्वना दी, दोनों को समझाया। पृथु महाराज के पास आए, उनसे कहने लगे ब्रह्मा जी और पृथु महाराज, देखिए अब आपने 99 राज्य अश्वमेध यज्ञ कर लिए, अब 100वां करने से इंद्रदेव इतने बेचैन हो रहे हैं और ऐसे कार्यों पे तुले हुए हैं, इसलिए आप अभी 99 से शांत रहो, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए आपको ऐसी चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप भक्त होने के कारण आप पद से आसक्त नहीं है, आप इस कारण से ये 100वां यज्ञ नहीं करने जा रहे हैं कि आपको इंद्रदेव का पद चाहिए, आप तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, परंतु इंद्रदेव के मन में पद के प्रति आसक्ति है तो इसलिए आप और करोगे तो वो और बेचैन हो जाएंगे, इसलिए भी छोड़ दो 100वां यज्ञ करना छोड़ दो। और इंद्रदेव से जाकर उन्होंने कहा कि इंद्रदेव आपके मन में भी ऐसे द्वेष भावना पृथु महाराज के प्रति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो फिर इंद्रदेव ने दोनों को मिला लिया और इंद्रदेव बहुत शर्मिंदा हुए जब उन्होंने देखा कि पृथु महाराज ने तुरंत निराशक्ति की भावना को व्यक्त की, तुरंत ठीक है ब्रह्मा जी ने कहा तो 100वां यज्ञ नहीं करूंगा। आजकल ऐसे मध्यस्थ किसी को होना बहुत मुश्किल की बात होती है, दोनों पार्टी सुनते नहीं है बात, है ना, सब अपने बात में अड़े रहते हैं। उस जमाने में देखिए ब्रह्मा जी आए, 2 मिनट समझाया उनको, पृथु महाराज समझ के ठीक है बस क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, 100वां यज्ञ नहीं है, किसको चाहिए इंद्र का पद, क्या चाहिए, चलो ठीक है आपने कहा ठीक, इंद्रदेव ने भी मान लिया। आजकल मध्यस्थी होना बहुत मुश्किल है ना कलयुग में, बल्कि क्या होता है मध्यस्थी की हालत क्या होती है, अंत में दोनों भला बुरा बोलते हैं उस व्यक्ति को, ना ये संतुष्ट होता है ना वो संतुष्ट होता है, भला करने जाओ तो बुरा होता है अपना और निकल आता है बेचारे की अभी और कभी नहीं बीच में पड़ेंगे। कभी कभी ऐसे बताया जाता है कि झगड़े में पड़ना नहीं, जब 2 ब्राह्मणों के बीच में झगड़ा होता है ना बीच में नहीं पड़ना चाहिए, 2 बकरी जब युद्ध करते हैं तब भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे चाणक्य की नीति में अनेक ऐसे श्लोक है। परंतु आजकल ये तो कलयुग है ना, कलह का युग है, सब जगह कलह है, झगड़ा झगड़ा होते रह रहा है, इसलिए बीच बीच में आना ही पड़ता है अन्यों को कुछ समस्या का समाधान करने के लिए। आजकल ये मध्यस्थी होना इसकी ये बहुत बड़ा विषय है और हम अदालत जो है ये भी इसको भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अदालत में क्या होता है वकील आते हैं, लड़ाई सालों साल चलते रहते हैं, 30 साल उसका जो पोता है वो आके फिर लड़ाई जारी रखता है, जिसके लिए वो युद्ध कर रहा था बेचारा वो सब चला गया, 30-40 साल बीत जाते हैं। तो इस तरह से ये अदालत ने सोचा कि ये सब क्या है, तो यदि बाहर के बाहर ही यदि समस्या मिट जाए तो अच्छी बात है, तो ऐसे वो बाहर कोर्ट के उनको मिलाते हैं जो दोनों झगड़ा करने वाली हैं, जो कोर्ट में आए हैं ان کو بلاتے ہیں کسی وکیل کے بیچ میں بٹھاتے بھائی آپس میں آپ سمجھوتا کر لو. تو یہ پریاس چل رہا ہے, عدالت بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اب یہی ایک راستہ ہے. پرنتو لوگوں کا سوبھاؤ ایک وچتر سا ہو گیا ہے کلیوگ میں. کلیوگ میں لوگ انیوں کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں, میری ہی صحیح, یہ کلیوگ کا دوش ہے. چھوٹا بچے کو بھی آپ کچھ بولیے مت کرو, کیوں ہے کہ نہیں. تو اس لیے بڑے بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. لیکن پرتھو مہاراج نے ترنت بات سن لی. اندر دیو نے دیکھا کہ پرتھو مہاراج کے کیا گن ہیں. ارے دیکھو تو صحیح, پرائے 99 یگ کرنے کے بعد 100 میں کرنے جا رہے تھے, ہاتھ ہی نکل کے کیول پونچھ رہ گئی تھی. ویکتی سوچے گا کہ میں نے اتنا سب کیا اور یہاں تک پہنچا تو سارے میں اس کو بھول جاؤں. لیکن پرتھو مہاراج بھول گئے. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے, یہ دنیا کی چیزیں ہیں. اندر کا پد بھی ملے کتنے سمے تک ملے گا, پھر چھوڑ کے جانا ہے, پھر مرتیو ہونی ہے, اور اس سمے یہاں سب کچھ ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو وہ بدھی تھی ان کی, کیونکہ وہ شدھ بھکت تھے بھگوان کے. بلکہ پرتھو مہاراج ایک شکتی آویش اوتار کہلاتے ہیں. پرجا پالن شکتی پردان کی تھی بھگوان نے ان کو, پرجا کا پالن کرنے کے لیے. جب سارے وشو میں پاپ کے کارن پرتھوی ماتا نے سارے اناج کے بیج آدی اپنے اندر سمیٹ لیے تھے, تو پرتھو مہاراج نے جا کر پرتھوی ماتا سے یہ سارے بیج آدی باہر نکالے اور کرشی پدھتی شروع ہو گئی پنہ. وہ پرتھو مہاراج کے کرپا سے ہوئی. جب پرتھو مہاراج نے پیچھا کیا پرتھوی دیوی کا, جنہوں نے کی ایک گائے کا سوروپ دھارن کیا, اور پرتھوی ماتا نے کہا کہ جب یہ اناج ایسے پاپی لوگ کھاتے ہیں اور اناج کھا کے رشت پوشت ہوتے ہیں کیول اندر ترپتی کرنے کے لیے, تو کیا میرا کرتو کیا بنتا ہے. میں اناج اتپن کرتی ہوں کس کے لیے, تاکہ لوگ بھوجن لیں اور بھوجن لے کے رشت پشت ہو کر بھگوان کرشن کی سیوا کریں. لیکن آج کل کیا چل رہا ہے کہ لوگ میرے اندر سے اناج لیتے ہیں, کھاتے ہیں, رشت پشت ہوتے ہیں اور بھوگ کرتے ہیں, بھگوان کو بھول گئے ہیں, پاپ کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے میں اناج کیوں دوں. اس لیے میں نے اندر سب لے لیا ہے, سارے اناج اور بیج جتنے بھی ہیں. تو پرتھو مہاراج نے کہا نہیں, اب میں راج اس پرکار سے کروں گا کہ سب کو دھرم پرائن بنا دوں گا. پرتھو مہاراج نے دھرم کے سدھانتوں کے انوسار راج کیا, اپنے پرجا میں کرشن بھکتی کو پھیلایا, ساری پرجا بھگوان کی بھکت بنی, اور بھرن پوشن بھی پرتھو مہاراج نے اچھی طرح سے کیا سارے پرجا کا. تو پرتھو مہاراج کے اس ایسے ادبھت ویشنو گنوں کو دیکھ کر اندر دیو جو بھی سوئم ویشنو ہیں ان کا ہردے پگھل گیا. تو انہوں نے سوچا ہاں صحیح ہے, اور کشما یاچنا کی, بہت شرمندہ ہوئے. ایسے بھاگوت میں بتایا گیا ہے کہ اندر دیو بہت شرمندہ ہوئے, ان کو برا لگا کہ ارے میں میرے وچار ایسے ہو گئے, میں دیوراج اندر ہوں اور ایسے دویش کی بھاونا میرے من میں آ گئی, وہ اچھی بات نہیں ہے میرے لیے. اور پھر پرتھو مہاراج اور اندر دیو دونوں نے آلنگن کیا. اور پربھوپا جی تاتپری میں بتاتے ہیں کہ یہ ویشنووں کے لیے بہت جاننے یوگی اور سیکھنے یوگی ہے. جب دو ویشنووں کے بیچ میں, دو بھکتوں کے بیچ میں مت بھید ہوتا ہے یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی غلط فہمیاں ہوتی ہیں, تو اس پرکار سے دونوں کو پھر سے ملنا چاہیے. ایسے پربھوپا جی بتاتے ہیں, دونوں کے ایرشا بھاو دویش بھاو تیاگ کر آپس میں مل کر ایسے پریم سے بھگوان کرشن کی سیوا کے لیے رہنا چاہیے. اپنے متھیا اہنکار کو تیاگ کر, اپنے دویش بھاونا کو تیاگ کر, یہ یاد کر کے کہ ہم سب کیول کرشن کی سیوا کے لیے یہاں پر جی رہے ہیں, ایسی بھاونا سے سارے سمسیاؤں کا نوارن ہو سکتا ہے. یہ جب تک بھوگ بھاونا رہے گی, جب تک پربھتو کو بنائے رکھنے کی بھاونا رہے گی, تب تک یہ سب چیزیں سمبھو نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت غور سے اس دویش اور ایرشا, اس گن کے بارے میں سوچنا چاہیے. परीक्षा अपने हृदय में करनी चाहिए। जब हमारे व्यवहार और विचारों में ये द्वेष और ईर्ष्या प्रकट हो जाता है, समझना चाहिए दुर्योधन अभी बोल रहा है। तुरंत दुर्योधन का वध कर लेना चाहिए, उसी समय दमन करना चाहिए। जब हम ज्ञान से अपने बुद्धि को समझाएंगे, मन को समझाएंगे कि क्यों मैं ऐसे द्वेष कर रहा हूं, किन चीजों के लिए कर रहा हूं, थोड़ा बहुत इस दुनिया के चीजों के लिए, इस दुनिया के धन के लिए, संपत्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, जो कि केवल थोड़े सालों के लिए मेरे साथ में रहेगा, ये सब दुनिया की चीज क्षणभंगुर है, तो ऐसे चीजों के लिए क्यों मैं मेरा मन का जो संतुलन है उसको बिगाड़ूं, क्यों मैं मेरी भक्ति को नष्ट करूं, क्यों मेरे जीवन को सफल करने के जो पथ में मैं कोई बाधाएं लाऊं। मनुष्य जीवन मुझे इसलिए नहीं मिला है कि मैं समय ऐसे चीजों में व्यर्थ करूं, तो मुझे सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, साथ में मिलकर सभी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और जिससे मैं द्वेष करता हूं उसके अंदर भी कितने अच्छे गुण हैं। सबसे अच्छा गुण ये है कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भले अंदर उसके दुर्गुण हो थोड़े बहुत, परंतु वो भगवान का भक्त है और धीरे 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 से वो सुधर जाएगा, उसके अंदर से जो गुण है दुर्गुण है वो निकल जाएंगे भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनंज भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। तो भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में घोषणा करते हैं कि यदि मेरे भक्तों के अंदर भी कभी कोई दुर्गुण हो भी, यदि वो मेरी भक्ति में सुदृढ़ता से लगा रहता है और उसको पश्चाताप की भावना होती है कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया, तो वो सही स्थिति में है। मैं ऐसे व्यक्ति को साधु ही मानता हूं। कृष्ण कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति, शीघ्र ही वो धर्मात्मा बन जाएगा और शाश्वत शांति की प्राप्ति करेगा। हे अर्जुन, इसलिए घोषणा करो कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता है। जब भगवान ऐसी घोषणा करते हैं, इसका मतलब है कि भक्त की चेतना को बनाए रखते हैं, भक्त की चेतना का संरक्षण करते हैं वो, न कि केवल उसके शरीर की रक्षा करते हैं। शरीर का नाश तो आज न कल होना ही होना है, और किस प्रकार से भगवान के भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, इसके लिए एक उदाहरण है कि हमारे संसार के एक भक्त हैं, ये फिलहाल अभी अभी की बातें हैं, और उनके जो रिश्तेदार थे वो बहुत विरोध कर रहे थे, उनको उन्होंने उनका अपहरण करके उनको तरह तरह के ऐसे गोलियां आदि दवाइयां देकर उसके मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिया, हॉस्पिटल में भर्ती करके, जिससे कि वो काफी कुछ भूल गया कि पिछले अनेक महीनों में क्या हुआ है, और लोगों को भूल गया, तो बहुत ही भोला प्रकार का बन गया, परंतु ये नहीं भूला कि मैं कृष्ण भक्त हूं। उसे पता चला कि यही है, कुछ गड़बड़ तो है, मुझे याद नहीं है क्या है, कुछ याद नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम यहां कुछ ठीक नहीं है, कृष्ण भक्ति होनी है, और फिर से उसने कृष्ण भक्ति शुरू कर ली है। तो ये है एक उदाहरण, इतना सब ऐसे परिस्थिति से गुजरने के बाद भी व्यक्ति की चेतना भगवान बनाए रखते हैं। जो अन्यों ने आक्रमण किया वो किया, तो जब भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करूंगा, ऐसा नहीं है कि जो आक्रमण करने वाला नहीं कर पाएगा, करेगा, लेकिन उसके बाद भगवान उसकी चेतना का संरक्षण करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, यदि हमने हृदय से इन गुणों का अनुशीलन करने का प्रयास किया। भगवान और भगवान के भक्त हम सबकी सहायता करेंगे इस प्रयास में। इस श्रद्धा से हमें आगे चलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।